ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः।
हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 श्लोक 9 और 10, क्योंकि 9 नंबर श्लोक में तात्पर्य नहीं है, 10 नंबर श्लोक में तात्पर्य है। पहले मैं 9 नंबर पढ़ लेता हूँ, इसके बाद 10 नंबर मेरा पीछे आप लोग दोहराएंगे।
वजो होशो बलम प्राणम अमृतम मृतम एव च तम ज्ञायो जन हेतु आत्मनम मन्यते जडम। हमारे इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमृतत्व एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देखरेख के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलाप का कारण मानते हैं।
श्लोक नंबर 10 मेरा पीछे दोहराइए।
जथा दारुमयी नारी जथा पत्रमयः मृगः एवं भूतानि मघवन् ईश तंत्राणि विधि भो। जथा दारुमयी नारी जथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईश तंत्राणि विधि भो।
शब्दानुवाद। जथा जिस प्रकार
दारुमयी लकड़ी की बनी, नारी स्त्री, जथा जिस प्रकार पत्रमय पत्तियों से बना, मृग पशु एवं इस प्रकार भूतानि सभी वस्तुएं, मघवन् हे राजा इंद्र, ईश श्री भगवान, तंत्राणि आश्रित रहकर, विधि कृपया जाने, भो हे महाशय।
अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की।
हे देवराज इंद्र, जिस प्रकार काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन उसे हास्य चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तात्पर्य इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5 अध्याय श्लोक नंबर 142 में की गई है। एकल ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य जारे जैसे नचाय से तैसे करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और अन्य सभी उनके दास है। वे जिस प्रकार नचाते हैं सभी ऐसा ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास है, हमारी कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5.1 में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा गया कहा जाता है, परम नियंता है, उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके उद्गम है, वे अनादि है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीतपदकमलम श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रातःकाल न श्रीमद्भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तभी जो शीर्षक चल रहा है मृतासुर की जसोस्य मृत्यु, ये दोनों का जसोस्य हुआ है। सिरे पे मृतासुर का जसोस्य है, इसका साथ साथ भी दधीचि मुनि का भी जसोस्य हुआ। अरे दोनों भगवान का निर्देश से ही काम किए। देवता लोग को गए दधीचि मुनि का पास, उनका हड्डिया मांगे पूरा शरीर को और भगवान का सेवा में लगाने के लिए। वज्र बनाया इंद्र ने और मृतासुर भी संपूर्ण शरणागति हो रहा है। ये दोनों श्लोक मृतासुर कह रहा है और इंद्र को शिक्षा दे रहा है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलेगा? हमें देहात्म का ऊपर उठना है। पहला 9 नंबर श्लोक में, पहला जो श्लोक 9 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं हम अपने को बलवान मानते हैं। हमारे इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति और दैहिक बल, यह है देहात्म बुद्धि। हमें अपने को सब कुछ मानते हैं, ये शिक्षा दे रहा है इंद्र को मृतासुर ने। जो कुछ होता है भगवान का इच्छा से, और जो भी कार्य चलता है धरती पे संसार में, जो भी कार्य होता है वो सब भगवान का इच्छा से। कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं भगवान का इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलेगा, ऐसा कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलेगा। जो भी कुछ होता है भगवान का इच्छा से, लेकिन हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया गया। थोड़ा सा स्वतंत्रता को हमें बहुत बड़ा मानते हैं। इंद्र को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया गया, पवन देव को स्वतंत्र थोड़ी से स्वतंत्रता दे दिया गया, सूर्य को थोड़ा स्वतंत्रता दिया गया, सभी को, जितने सभी देवता लोक है सभी को एक थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया गया।
लेकिन थोड़ा से स्वतंत्रता से फिर अहंकार बढ़ जाता है। आप जितने सब देवता लोग को देखेंगे सभी का अहंकार को खंडन किया भगवान ने, स्वयं ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र हो, कोई भी वरुण हो, सभी का ये शास्त्र में पूरा पूरा प्रमाण है, सभी का इन अहंकार को खंडन किया। इसलिए कहते हैं अहंकार से भगवान नहीं मिलते हैं, अभिमान से अभिराम को प्राप्त नहीं कर सकते, अभिमान को खंडन करके अभिमान अभिराम को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अहंकार टूटेगा नहीं, जब तक ईर्ष्या नहीं जाएगा, ऐसा मतलब आश्चर्यता, तब तक हमें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा हमारा भक्ति का नाशक है। तब यहां पे क्या कहते हैं, मैं पहला काल प्रभु जी जो श्लोक चर्चा कर रहे थे, ये श्लोक में एक चीज बताना चाहता था। इसमें पहला पॉइंट तात्पर्य में लिखा है, सुर और असुर में यह अंतर है कि सुर जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ पाते। और इसलिए कहते हैं तीन व्यक्ति को का शरण में कभी नहीं जाना चाहिए, और तीन व्यक्ति को कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तीन व्यक्ति का शरण पे नहीं जाना है, तीन व्यक्ति वही तीन व्यक्ति है, उनका शरण पे नहीं जाना और उनको विश्वास भी नहीं करना। तीन व्यक्ति कौन है? एक हो गया सुर, देवता लोग के शरण में जाओगे कष्ट मिलेगा, देवता लोग को जितना सुख देते इतना दुख देते हैं, कामे स्थिति होते गया ना प्रपद्यंत अन्य देवता, ये भगवद्गीता का श्लोक है। सुर गया, इसके बाद क्या है? असुर, असुर का शरण में जाएंगे तभी दुख मिलेगा। असुर सुर असुर और ससुर, ये तीनों का शरण पे कभी नहीं। देखिए ससुर भी कैसा परेशानी किया, आप लोग को मालूम नहीं है, जगन्नाथ का लीला में बता दे रहा हूं। जगन्नाथ मंदिर पे, और जगन्नाथ का पत्नी लक्ष्मी है, कौन है? लक्ष्मी है। जगन्नाथ नारायण हुए तो पत्नी लक्ष्मी, तब लक्ष्मी का पिताजी कौन है? समुद्र। पिताजी कौन है? कितना परेशानी किया, कितना परेशानी हुआ भाई। पति पत्नी ठीक से रात को सो नहीं पाते थे, इतने हवा आता था, हवा का जो आवाज है ना, फिर जगन्नाथ का ससुर है ना, जगन्नाथ लक्ष्मी से शिकायत किया, बोला देख तेरा पिताजी का क्या हाल है, हमको नींद भी नहीं दिला पाती। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर पे इसका हवा का आवाज को रोकने के लिए पश्चिम दरवाजा का साइड पे कर्णपात हनुमान, हनुमान को वहां पे सेवा दिया गया, और मंदिर के अंदर आवाज नहीं आती। अभी जगन्नाथ आराम से शयन करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, तीन व्यक्ति, सुर बोलो तो कम से कम, चलिए। तो ये काल का जो श्लोक था, ये इसलिए इसलिए तब इंद्र का, इंद्र और भूतासुर का अंदर ये वार्तालाप चल रहा है, और भूतासुर ने ये दोनों श्लोक में बोल रहा है, जो भी कुछ होता है भगवान का इच्छा से, भगवान का इच्छा से सब कुछ संसार चलता है। पहले जानना चाहिए, संसार में लोग तो पहले भगवान का शरण पे नहीं जाते और भगवान को जानते नहीं। बहुत लोग होते हैं जो कि भगवान को मानते नहीं, भगवान है कौन। इसलिए प्रमाण दिया, यहां पे प्रमाण दिया गया, एकले ईश्वर कृष्ण, क्या बताया चैतन्य चरितामृत में, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ये दो बात को याद रखिए, ईश्वर कौन है? कृष्ण है। भृत्य कौन है? संसार में जितने सब जड़ जगत में जो भी है सभी उनका क्या है? भृत्य। भृत्य मतलब क्या है? दास। भगवान कृष्ण एक ही है, प्रमाण भी है गीता महात्म्य में,
एक देव देवकी पुत्र एव, ये गीता महात्म्य की श्लोक है। एक देव है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बीस नहीं, पचास नहीं, और जितने सब है, जो जितने 33 करोड़ देवता है ना, ये सभी भगवान का दास है। इनका अंदर एक बार अहंकार आया था, सारा देवता लोग का अंदर। भगवान एक बार जक्ष बन कर आए, जब भगवान जक्ष बन कर आए तब उनका सामने पहले अग्निदेव आया। तब जक्ष भगवान पूछने लगे, आप कौन हो? ना मैं अग्निदेव हूं। अच्छा, आपका काम क्या है? ना मैं सारा संसार को जला के भस्मसात कर सकता हूं। अच्छा, इतने पावर है, सब कुछ भगवान से पावर लेके अपने को घमंड बना के अग्निदेव कह रहे हैं। तब जक्ष ने एक तिंखा उठाई, एक घास का टुकड़ा उठाई, बोले इसको जला के दिखाइए। तब अग्निदेव क्या हुआ, परेशानी हो गया, पसीना पसीना निकल गया, फेल मार के चला गया। फिर कौन आए? वायुदेव आए। तब जक्ष भगवान का सामने प्रकट होके कले पूछे, आप कौन हो? नहीं, मैं वायुदेव हूं। बहुत, आप क्या कर सकते, आपका काम क्या है? नहीं, सारा संसार को उड़ाकर फेंक सकता हूं। भाई कहां फेंक सकते हैं, ना पाकिस्तान? अरे ऐसा नहीं। बोले ठीक है, आपका इतना बल है, दिखाइए। तो वही घास का टुकड़ा उठाइए, बोले इसको उड़ाकर दिखाइए। बस उड़ा नहीं पाए, वो भी पसीना पसीना होकर निकल के, ऊपर से नीचे तक पसीना हो गया, निकल के चला गया। फिर इसके बाद और कौन आया? वरुण देव, जल देवता। तो वो आए, बोले आपका काम क्या है? ना सारा संसार को जलमग्न करा सकता हूं। अच्छा, सबको जलमग्न करके उखाड़ के बाहर निकाल सकता हूं, भसा सकता हूं। तब वही जक्ष भगवान ने वही तिंखा उठाया, घास का टुकड़ा को, बोले इसको भसा के दिखाइए। तब वो भी फैल मार गए। इसलिए भगवान का सामने, भगवान शास्त्र में प्रमाण दे रहे हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य दास। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दास है, कोई भगवान नहीं बन सकता है। आज का टाइम पे भारत में तो भगवान बन रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन भगवान बन रहा है, डेली भगवान बनते हैं भारत में। लेकिन उनको भगवान का डेफिनेशन अभी मालूम नहीं। हम पढ़ा बताते हैं भगवान का डेफिनेशन क्या है। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 18, मेरा पीछे दो रही है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकलम लोकम मूढ़यंती जुगे जुगे। ये प्रमाण दे रहा है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में प्रमाण दे रहा है। और जो भागवत को नहीं मानेगा तब क्या है, ये जवन सम है, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए कहते हैं मुसलमान कभी भागवत को नहीं मानते, जवन सम कहा गया। और भागवत में प्रमाण है, भागवत बता रहा है भगवान है कौन। फिर भगवान का क्या काम है फिर बताते हैं, मेरा पीछे बोलिए, सृजामि तन्निजुक्त अहम् हर हरति तद्रुशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपति त्रिशक्ति धृक्। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूं, शिवजी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप से सबको पालन करते हैं वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। भगवान से ही सब कुछ आता है, लेकिन असुर लोग को विश्वास नहीं होता है। अभी उनको पूछा जाएगा, आपको जन्म दिया कौन? मतलब हमारा माता पिता दिए। माता पिता ये शरीर कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भी क्रिएट नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते। क्या है उनका शक्ति? है कुछ शक्ति? एक ही घास को उगा के देखिए, तब तक हम मालूम पड़ेगा। जो भी शक्ति है सो भगवान से ही आता है। पहले हमको भागवत का ऊपर प्रमाण देके समझना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, उत्पत्ति में प्रलयम चैव भूतानम गतिम गतिम वेति विघ्ना विद्याम च सवाच्य भगवान इति। जो उत्पत्ति और प्रलय भूतों की गति अगति और विद्या अविद्या को जानता है उसको ही भगवान कहा जाता है। ये किसमें है? बृहद नारदीय पुराण में। हजारे श्लोक आपके सामने बोलूंगा जो कि 26 श्लोक में भगवान कृष्ण को कहा गया भगवान। हजारे श्लोक प्रमाण है, काट नहीं सकता है कोई भी शास्त्रगत प्रमाण को। और जो मूर्ख है उसको क्या सामने बोलेंगे, इसको कैसा समझाएंगे भगवान है कौन? लेकिन हम भगवान का दास, हमें भगवान नहीं है। क्या है? हमें भगवान का दास है। आर सब वृत्य, क्या क्या गया? आर सब वृत्य, जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य। फिर देखिए चैतन्य चरितामृत में क्या प्रमाण है, मेरा पीछे दौड़ाइए। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, स्वयं भग। परमेश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कय, परमेश्वर कृष्ण कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, सभी का आश्रय कौन है? भगवान। ये प्रमाण दे रहे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, सभी का आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण। गिरिराज, गिरिराज का छत्र छाया में हमें रह रहा है। फिर परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र का है, सभी शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण है भगवान कौन है, बोलो, सुनाई देना ना जाए। ये प्रमाण है सभी शास्त्र में। फिर क्या कहते हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण रे शरीरे सर्व विश्व रे विश्राम। क्या कहते हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण ही सभी धाम का मूल है। कृष्ण रे शरीर सर्व विश्व, जितने विश्व है सब विश्राम है। भगवान चाहेंगे तो प्रलय भी कर सकता है, प्रलय करने का टाइम पे क्या करते, सारा जीव को श्वास में अंदर ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं जीव को विश्राम दे देते हैं, फिर सृष्टि जब करते हैं क्रिएट करते हैं। लेकिन हमको अभी तक भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें भगवान का दास है। और भगवान भी प्रमाण करके बताया, भगवान भक्त का पास दास बन जाते हैं। भगवान करके दिखाया, प्रैक्टिकल, कभी थियोरिटिकल भगवान नहीं किया। भगवान अपन जितने जगह पे आप देखेंगे भगवान दास बने हैं। श्रीमद् भागवत में तीन जगह पे दास बने हैं, ये प्रमाण है। आपको श्लोक नंबर बता दे रहा हूं, 10th कैंटो का 75 चैप्टर श्लोक नंबर 27, युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ में टेनिस कैंटो 47 अध्याय श्लोक नंबर 56 और टेंथ कैंटो 21 अध्याय श्लोक नंबर 18 हरिदास वर्ज्य जो श्लोक आता है ये है, और श्री उद्धव जी, ये तीन लोग भागवत में प्रमाण है। भागवत में बहुत सारे लोग का नाम है, बहुत भक्त का नाम है, लेकिन ये तीनों का पास है लगा गया हरिदास। कहने का है हमें दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हमें दासत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान स्वयं दास बनकर गए सुख को आस्वादन करने के लिए सभी जगह पे। और किसका दास बने है? भक्त का दास बने है। पहला तो सुदामा का चरण धोए, वहां पे दास बने कि नहीं बने? एक दूसरा अर्जुन का सारथी बने, सही दास बने। तीसरा राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ में भगवान को सेवा क्या मिला था? पत्तल उठाने का। दास मां दासत्व को स्वीकार किए कि नहीं किए? भगवान ऐसा नहीं कहे, नहीं नहीं मैं पहले बैठ कर खाऊंगा बाद में से पत्तल उठाऊंगा, ऐसा बोले क्या? हम तो पहले बैठते हैं। फिर नंद महाराज का खड़म उठाए, दास बने कि नहीं बने? गो माता का सेवा किए, गाय का दास बन गए। जब यशोदा ने कहा कृष्ण बलराम दोनों गाय चराने जा रहे थे, तब बोले देखो इतना कड़की धूप हो रहा है और आप नंगा पैर में जा रहे हो, तब आपका पैर में कंकण चुग जाएगा, कंटा चुग जाएगा, और इतना धूप हो रहा है आप छतरी ले लो और चप्पल ले लो। तब कृष्ण ने क्या कहा? मेरा गो मैया को क्या करना है? उनको चप्पल दोगे और छतरी दोगे तो मैं फिर लेकर जाऊंगा। यशोदा मैया कहते हैं ये तो पशु है। कृष्ण उसी टाइम पे मुख में हाथ दे दिए, बोले पशु बोल दिया, ये मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूं, मेरा सेवा करने का अधिकार है, मैं सेवा कर रहा हूं। इसलिए उनको जब तक नहीं दोगे चप्पल और छतरी तब तक नहीं, मैं यहां मालिक नहीं, मैं दास हूं, सेवा कर रहा हूं। और वहां पे सेवा किए, सखा लोग का साथ भी, सखा लोग का भी सेवा किए। भगवान कितनी जगह पे दास बने हैं, लेकिन हम दास बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहते ना अहंकारे मत हया निताई पद पाशोरिया असत्य रे सत्य करिमानी, असत्य रे सत्य करिमानी। अहंकार अहंकार है ना हमारा, और शास्त्र में प्रमाण दे रहे पहले दास बनो, हर जगह पे बताते हैं। अब देखिए ना हम विप्र न च नरपति ना पि वैश्य न शूद्र ना हम वर्ण न च नरपति नो पनस्तो जतिरिबा किंतु पद्यो अखिल परमानंद पूर्णामृत अब्धे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानु दास। कितनी जगह पे प्रमाण है। अम्बरीश महाराज का पास भी भगवान दास बने है, अम्बरीश महाराज का पास। अम्बरीश महाराज सारा इंद्रियों को लगे थे भगवान का सेवा में, तो भगवान एक बार आए, जब अम्बरीश महाराज अट्टा मतलब गेहूं पेस रहे थे, किसमें? चक्की में। जब गेहूं चक्की में पेस रहे थे उसी टाइम में क्या हुआ, और अम्बरीश महाराज से पसीना आ रहा था, तो भगवान पीछे से जाके क्या कर रहे, पंखा हिला रहे। भगवान कितनी जगह पे दास बने और हाँ में दास बनना नहीं चाहते, ये हमारा घमंड था, ये हमारा अहंकार था, और यह हमारा गर्व है। ये गर्व का होने का नाते हमें भगवान का भजन में, भगवान का भक्ति में, भगवान का सेवा में, और ये वृद्धाश्रु ये बता रहा है जो कुछ होता है। देखिए यहां पे बताया गया ना जथा दारुमयी नारी तथा पत्रमय मृगहा। लकड़ी में बना हुआ कोई भी चीज आप देखोगे
इसको चलाने के लिए इसका पीछे कोई ना कोई है। लकड़ी कभी डायरेक्ट नहीं चल सकता है, लकड़ी कभी चलता है? आप लोगों को देखा होगा मैजिक दिखाता है ना, पीछे क्या बोलते हैं, हाँ पपेट काठपुतली, तब इसको आप लोग सभी लोग देखे हैं। और वो क्या कहते हैं, पत्रमय मृग, और वो घास फूस में बना हुआ कोई चीज भी, इसका पीछे कोई ना कोई। इसलिए कहते हैं परम नियंता पूर्ण पुरुषतम, भगवान की इच्छा अनुसार ही वो काठपुतली भी नाचता है, उसको नचाने वाले कोई ना कोई है। उसी प्रकार हमको भी त्रिगुणीमय माया द्वारा, भगवान का जो त्रिगुणीमय माया द्वारा हमें नाच रहा है, फिर भी हमें नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद ने द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो किताब है ना, उसमें आप देखिए त्रिगुणीमय माया को किस प्रकार भगवान नचा रहा है, काठपुतली का तरफ नचा रहा है। और जो भी कुछ होता है ये भगवान का इच्छा से होता है, लेकिन हम पहले भगवान का दास बन के समझना है। कृष्णा हमारा प्रभु है, हम उन्हीं का दास, रहते हैं विश्वास जीव रहे उल्लास, इतना ही तो विश्वास करो, प्रभु हमारा है और मैं उनका दास हूं। इतनी विश्वास हो जाए व्यक्ति आनंदमय जीवन बिताएगा। लेकिन जब अहंकार आ जाता है, मैं दास नहीं मैं मालिक हूं, कोई भी संसार में मालिक हो नहीं सकता है, कितना भी प्रयास करने मालिक नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान का सारा संपत्ति को कब्जा करके बैठा है, बोलता है मैं ये यहां का मालिक हूं। भाई कौन किसका मालिक है? जब गर्भ से बाहर व्यक्ति निकलता है, अब देखिए गर्भ से जब बाहर निकलता है और आते हुए 12 साल 15 साल 20 साल का बाद बोलता है मेरा ये जमीन है, 20 साल तक तो उसको पता नहीं होता है क्या, होता है क्या? 20 साल का बाद बोलता है ये मेरा जमीन है, भाई तेरा बाप का भाई मैं नहीं है, ये संपत्ति आपका नहीं है, संपत्ति कृष्ण का है। इसमें एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं व्यक्ति को समझाने के लिए, आप लोग सभी प्रचारक हो। किसी का नाम लेकर बताता हूं, आपका नाम प्रभु जी? ये बैठे आशुतोष जी, इनका नाम है अभी आशुतोष है, कितना उम्र है? 12 साल हुआ। अब बताइए 13 साल का पहले आशुतोष था कि नहीं था? कितने लोग का हाथ उठाइए, आशुतोष था कि नहीं था? आप लोग नहीं समझ रहे, मैं समझा रहूंगा, था ना? कुछ लोग का था, कुछ लोग कंफ्यूज में है, आशुतोष था लेकिन किसी जोनी में। आप लोग जानते हैं आत्मा अंदर नित्य है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन ये शरीर मिलने का नाते है उसका पिता माता ये बनकर आए हैं और उसका नाम दिए आशुतोष। और नाम दिए किसके लिए? ये सिर्फ इस शरीर को पहचानने के लिए। लेकिन आत्मा का कोई नाम है क्या? आत्मा का ओरिजिनल नाम चैतन्य महाप्रभु बता देना, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास है। हमें शरीर का नाम दिया पहचानने के लिए, इसलिए हम लोग आईडी निकालते हैं। हमारा ओरिजिनल आईडी क्या है? कृष्ण नित्य दास। और ये अभी 12 साल में आशुतोष जी बोल रहा है ये मेरा घर है, अभी 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 80 साल का बाद आशुतोष कहां गया पूछा जाए तो? फिर भी आशुतोष है लेकिन ये शरीर नहीं है। इतने साल तक ये जमीन, ये संसार, ये शरीर का आसक्त होके कब्जा करके बैठा था, ना ये शरीर हमारा है ना ये संसार हमारा है। शरीर का प्रति और संसार का प्रति आसक्त नहीं हुई है, ओके श्याम सुंदर का प्रति आसक्त हो जाइए। ये शरीर हमारा नहीं, ये संसार हमारा नहीं, भगवान ने कुछ दिन के लिए भेजा है, सिर्फ कुछ दिन के लिए, और वो भी टाइम सब लिमिट ही है, उसी समय को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं मृत्यु का तीन चीज चेंज नहीं कर सकते, मृत्यु का डेट, मृत्यु का टाइमिंग, मृत्यु का प्लेस, याद रखिए। सारा संसार को आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा पढ़े लिखने के बाद जो पढ़े लिखे होते हैं बोलते मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा वो कर लूंगा। जैसा हमारा गुरु महाराज को एक बार प्रभुपाद जी मिलने के बाद है प्रभुपाद जी महाराज को बोले आप तो बड़ा साइंटिस्ट हो। और महाराज जी बहुत युक्ति करते थे बहुत तर्क किया। आप बताइए आप इतने सब कुछ कहते हो आप एक बूंद पानी क्रिएट कर सकते हैं इतने बड़ा साइंटिस्ट हो लेकिन यो एक बूंद पानी के लिए क्या फिर चाहिए H2O है कि नहीं। जो साइंस पढ़ने वाले उनको मालूम होता है। और वो कहां से इतने लाएगा इसको लाएगा तब जाके एक बूंद जल सृष्टि कर सकता है। लेकिन अहंकार मैं बड़ा साइंटिस्ट हूं मैं बहुत बड़ा PhD हूं मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं। एक ही क्वेश्चन में महाराज इमीडिएटली दंडवत किया चलो प्रभुपाद का शरण पे। और महाराज ने प्रभुपाद ने महाराज को यही सेवा दिया सारा साइंटिस्ट लोग को वृंदावन लेकर आना। ये जो गुरुकुल बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है साइंटिस्ट लोग को रहा के उनको भक्ति लाइन में भक्त बनाकर छोड़ने का। और इसलिए प्रभुपाद जाने का बात है जो भी ये गुरुकुल बना मतलब तो क्या होता है ना व्यक्ति के अंदर अहंकार जब बढ़ जाता है वो पहचान नहीं पाता है भगवान को। लेकिन दासत्व को स्वीकार करना पहले इसलिए ये प्रमाण देते हैं यहां पे हर चीज में प्रमाण है हम दास बनना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ये शरीर का ऊपर हमें किसका सेवा करना चाहिए और किसका दास बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का चार पत्नियां होते हैं प्रत्येक व्यक्ति का चार पत्नी होते हैं। पहला नंबर पत्नी को पत्नी का सेवा में लगा हुआ सुबह से शाम तक देखभाल करता है पहला नंबर पत्नी। दूसरा नंबर पत्नी को देखाता रहता है। तीसरा नंबर पत्नी से सलाह लेता है। चौथा नंबर पत्नी को कभी मोड़ कर देखा नहीं। पहला नंबर पत्नी कौन है सुबह से शाम तक देखभाल करता है क्या है शरीर लगे पड़े है शरीर। दूसरा नंबर पत्नी को देखाता रहता है क्या है बोलिए भाई धन संपद। तीसरा नंबर पत्नी से सलाह लेता है किससे कुछ भी परेशानी होता है किससे सलाह लेता है रिश्तेदार है ना रिश्तेदार से मतलब बुद्धि बुद्धि से। और चौथा नंबर पत्नी को कभी मोड़ कर देखा नहीं क्या है शरीर के अंदर नित्य निवास करने वाले हैं आत्मा। और जिस दिन मृत्यु होता है एक एक नंबर पत्नी से पूछता है पहला नंबर पत्नी से पूछा आप मेरे साथ जाओगे पहला नंबर पत्नी क्या बोलता है नहीं जाऊंगा। शरीर किसका साथ जा गया और शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं शरीर के लिए सब कुछ संसार में शरीर के लिए मर्डर करते शरीर के लिए झूठ बोलते शरीर के लिए चीटिंग करते शरीर के लिए चोरी करते शरीर के लिए धोखा देते शरीर के लिए तलाक करते जो भी कुछ किया किसके लिए किया शरीर साथ दे रहा सब कुछ किया शरीर के लिए। फिर दूसरा नंबर पत्नी से पूछा आप मेरा साथ जाओगे दूसरा नंबर पत्नी क्या है धन संपत्ति वो क्या बोलता है मना कर दिया ना धन संपत्ति किसके साथ गया वो बोलता है मैं क्यों जाऊंगा मैं तो डबल शादी करूंगा। धन संपत्ति तो दूसरा के पास जाता है मतलब डबल शादी हो गया ना। तीसरा नंबर पत्नी से पूछा आप मेरा साथ जाओगे तीसरा नंबर पत्नी मना कर दिया। और चौथा नंबर पत्नी कौन है वही जाता है ना शरीर से निकल के। लेकिन हम उसका बारे में कभी सोचा नहीं सारा संसार के बारे में सोच रहे हैं शरीर के लिए सोच रहा है रिश्तेदार के बारे में सोच रहा है परिवार के लिए सोच रहा है। कभी हमें को अभी तक भी मालूम नहीं हो रहा है। काल जैसा प्रभु जी बता रहे थे ना हमारे सामने मृत्यु खड़ी है हां जोड़ के, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास हो रहा है क्या? अपना खुद का जब तक, खुद का जब तक हाथ टूटेगा नहीं, पैर टूटेगा नहीं, कष्ट अनुभूति होगा नहीं। हमें देख रहे हैं हमारा पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी, और इतने वृंदावन में कितने भक्त लोग का हरिबोल हुआ, सभी को लेकर केसी घाट में हरिबोल किया, फिर भी हमारा विश्वास नहीं। हम भी बैठे हैं दम्भ में, नहीं नहीं टाइम हो गया 9 बजे, अभी गुलाब जामुन मिलेगा। कितना भी ये कि फिर क्या कहते हैं, इसलिए हमको मन में विचार ले लेना चाहिए, हम दास है। और एक ही जगह पे, 7 जगह पे कहा गया, एक श्लोक को लिख लीजिएगा, याद रखिए, 7 जगह पे कहा गया है जो कि दास हूं। दासनी को दास मत, जन्मन फलम एदम, मधु कैट बहारे मत, प्राथन्य मद अनुग्रह एस एव। तोद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथः। हे मधु और कैटभ दैत्य के शत्रु, हे लोकनाथ, मेरे जन्म का यही फल है, मेरा अभिष्ट है, मेरे ऊपर आपका यही परमा अनुग्रह कि आप मुझे अपने दासों का दासानुदास समझकर स्मरण करें। एकनिष्ठा होके भगवान का सेवा करने से भगवान भी आपको सहायता करने के लिए, और भगवान आपका सेवा लेने के लिए तैयार है, भगवान भी आपका सेवा लेने के लिए तैयार है। आप ऐसा सेवा निष्ठा करते हैं, भगवान भी कहां हिलेंगे नहीं, आपका सेवा ही लेंगे और किसी का सेवा नहीं लेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, एक बार भगवान का पास समर्पित हो जाने के बाद क्या कहते हैं, एक संत थे, ये संत का पास 4 शालिग्राम था, 4 शालिग्राम शिला था। भक्त भगवान का प्रति कितना निष्ठा होना चाहिए दासत्व को स्वीकार करने के लिए। तब जो 4 शालिग्राम थे प्रत्येक दिन सेवा करते थे, शालिग्राम का जल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, सब कुछ करते थे। तब एक दिन गांव पे और कुछ संत लोग ऐसे मिल गए, बोले तीर्थ में गए कुछ स्थान घूमने के लिए, ऐसा दर्शन करने के लिए गए, और वो ये शालिग्राम जो सेवा कर रहा था वो शालिग्राम साथ में कहां भी जाते थे, क्या करते थे, शालिग्राम को साथ में लेकर जाते थे। गए और जाने के लिए तो सब ट्रेन में जा रहे थे, गए दूसरा जगह में दर्शन किया और कुछ जगह पे पिकनिक बनाया, पार्टी बनाया, सब कुछ आए, वही ट्रेन में आए। और ट्रेन में ऐसा पास आस पास में जब बैठते हैं, कभी इधर उधर बात हो जाता है, तब उतरने का टाइम आ गया। जब उतरने का टाइम आ गया तब सभी लोग उतर गए, वो संत भी उतर गए, लेकिन मालूम नहीं था शालिग्राम को उस ट्रेन में छोड़ दिए थे। ये शालिग्राम ट्रेन में रह गया, तो ना ट्रेन का जो टाइम होता है तब सभी लोग फटाफट उतरते हैं ना, उतरने का तो 2 सेकंड 2 मिनट 3 मिनट ऐसा ही प्लेटफॉर्म में रहता है ट्रेन, तब सभी उतर गए। हाँ तो शालिग्राम ट्रेन में बैठा है, और संत जाके घर पे देखा, अपना लगेज सब चेक किया, अरे शालिग्राम नहीं, बहुत दुखी हो गया। और उसका साथ में जितने सब साथी लोग गए थे सभी लोग बोले, बोले संत जी हमें दूसरा शालिग्राम ला के दे दे, तो आप उसका सेवा करना। बोला नहीं, मेरे को वही शालिग्राम चाहिए, वो मेरा सेवा लेना चाहते हैं, मेरे को जरूर वो मिलेंगे, नहीं तो मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा, ये संकल्प। फिर उन्होंने ये संकल्प लेकर घर से निकल गए। बोले वो ट्रेन कहां पे होगा, ट्रेन कहां होगा, और रास्ते में जाते जाते लोग पूछने लगे, भाई कहां जा रहे हो ना, मैं जिस ट्रेन में आया था वो ट्रेन में मेरा सामान रह गया। बोला वो तो ट्रेन चल गया होगा, अभी तक तो थोड़ी रहेगा, 2 मिनट तो ट्रेन में प्लेटफॉर्म में रहता है। नहीं नहीं, और दुखी होकर आगे चलते 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 रोते रोते जा गया, तो ट्रेन क्या हुआ, स्टेशन से 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद एक बगी में आग लग चुकी है। जब आग लग चुकी है और सभी लोग हैरान है, सभी लोग उतर चुके हैं, तब जाकर पहुंच गया। और वो जहां बैठते जहां बैठा था सेठ, उसी सेठ के पास वो शालिग्राम। तब जब शालिग्राम उठा के लेकर आया तो वह अग्नि ऑटोमेटिक बंद हो गया, जो आग लगी थी वो आगे बुझ गया। बहुत सारा आया था, फायर स्टेशन से इतना गाड़ी आया था, कोई भी आग बुझाने में बड़ा मुश्किल पड़ गया था। लेकिन और सभी लोग हाथ जोड़ के बोले, बाबा जी आपके पास क्या है, क्या चमत्कारी है जो कि अभी आग को बुझाने के लिए हमें इतने लोग लगे थे। और फिर आग बुझ गया, फिर ट्रेन चालू हो गया। ये भक्त का भगवान का सत्य निष्ठा है, ये भक्त का भगवान का सत्य निष्ठा। इस प्रकार दासत्व को स्वीकार करना है। तब क्या होता है, एक ही तो अहंकार, गर्व और घमंड, ये सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा के लिए नतमस्तक। जितने बार आप प्रणाम करोगे ना, जितने बार आप प्रणाम करेंगे, हो सकता है हमें शारीरिक में परेशानी है, मानसिक स्तर पर भी प्रणाम कीजिएगा। बारंबार प्रणाम करने मात्र से हमारा अहंकार दूर होता है, अहंकार नष्ट होता है। नहीं तो यहाँ पे ब्रज में हमको शिक्षा मिलता है, हर पेड़ पौधा आप देखेंगे सभी सिर झुका करे, सिर झुका। इसलिए यह हम जानना चाहिए, आमी नित्य दास तुमी पलायिता तुमी गुप्ता जगन्नाथ, तुम्हारा सकल आमी मात्र दास, हमारे तारीफ तुमी, तुम्हारा चरण करिनु बरन, आमी तो आमी आमारा नहीं तो आमी। ये नरोत्तम दास ठाकुर गीत है, क्या है, तुम्हारा सकल आमी मात्र दास, आप प्रभु है मैं आपका दास हूं, हमारा तारीफ तुम्हें, आप मेरा को उधार कर सकते हैं, और तुम्हारा चरण करिनो वर्ण, आपका चरण में मैं आया हूं प्रभु, मैं आपका चरण में आया हूं, और हमारा नहीं तो आमी, हम भी हमारा नहीं है, हम आपको दे चुके हैं। एक बार हमें गुरु का हाथ में दे दिया हमारा जीवन को पूरा, जिस प्रकार गुरु चलाना है हमें दे दिया लड़े, और वहां समय पे नहीं बोला ना, नहीं ये मेरा है मेरा है, भाई तेरा है क्या, अभी जीवन में दे दिया गुरु को समर्पित, गुरु आपको उधार करेंगे, संकल्प लिए है। थोड़ा बहुत त्रुटि होता है गुरु आएंगे लेने के लिए भी, इसका थोड़े लास्ट में बताया था 2 मिनट, किस प्रकार गलती हो जाने के बाद भी गुरु भी आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य है, दीक्षा ले चुका है, दीक्षा लेने का बाद थोड़ा नियम में गलती किया, तब गलती होने का नाते उसको जमपुर जाना पड़ा। जमराज उनको पूछा, बोला आप दीक्षा लिया था और इतना बड़ा गलती किया, तब क्या करना है, गुरु निष्ठा भक्ति नहीं करके गुरु का बात को नहीं सुना, गुरु का वचन को काटा है, तो वह जमपुर में जब यह वार्तालाप चल रहा है, जमराज और वो व्यक्ति का वार्तालाप चल रहा है, तो इमीडिएटली गुरु आए, भक्ति से जहां सर इतना गुरु प्रकट हो गए। इसको तो महसूस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा था, मैं गुरु से दीक्षा लेने के बाद में इतना बड़ा गलती किया, उसी टाइम में पश्चाताप होता है, पश्चाताप हो रहा है। तब इमीडिएटली भक्ति से जहां सरिता गुरु आए, देखे यही व्यक्ति, मैं आपको दीक्षा दिया था तो फिर आप इतना बड़ा गलती किया, ठीक है नेक्स्ट जन्म आपको मिलेगा, नेक्स्ट जन्म से। और वो व्यक्ति का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, उन्हीं का आश्रम में रहना, आश्रम में जो गुरु बनेंगे उन गुरु से फिर दीक्षा लेना, दीक्षा लेने का बाद है फिर आपका उद्धार होगा, नियम निष्ठा लेके आपको गुरु निष्ठा होकर सेवा करना पड़ेगा और नियम को तोड़ना नहीं। फिर उसका व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिसका पास दीक्षा लेने के लिए कहे थे उन्हीं का से दीक्षा लिया, फिर नियम पूर्वक विधि को पालन किया, जिसका बाद फिर उधार हुआ। बाई चांस त्रुटि हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमें त्रुटि करते रहेंगे, बहुत सावधान। ये वृंदावन में वास करना इतना आसान नहीं है, वृंदावन को देखना हमारा ये जड़ चक्षु से हमें नहीं देख पा रहा है, इसीलिए तो परेशानी है। मेरा पीछे थोड़ा बोलिए।
गौड़ ब्रज जने भेद ना देखिब, गौड़ ब्रज जने भेद ना देखिब, होइब ब्रजवासी, होइब ब्रजवासी, धामेर स्वभाव नयने स्फुरिब, धामेर स्वभाव नयने स्फुरिब, होइब राधार दासी, होइब राधार दासी।
तब पहला क्या आया, गौड़ ब्रज जनेर भेदना देखिब। गौड़ देश कौन है, गौड़ देश मायापुर, ब्रजजन ब्रज में रहने वाले जितने जन है ये दोनों में भेद ना नहीं देखना, भेद नहीं देखने का, सब वैष्णव है। हमारा गुरु महाराज बोलते थे, कभी आते थे तो इधर वृंदावन में आके बंदर को देखते थे, एह परम वैष्णव है, ऐसा दिखाते थे, बोलते परम वैष्णव है, बंदर को दिखा के दिव्य दृष्टि जिसका होता है। लेकिन हमको तो दिव्य दृष्टि आया नहीं अभी तक, कब आएगा, इसलिए कहते हैं होइब ब्रजवासी भेदना देखिब, होइब ब्रज में वास करे मिलेगा। और धामेर स्वभाव, धाम का जो स्वरूप है ना, धामारा स्वभाव जो है, धामारा स्वरूप को नयने स्फुरिब, इसी चक्षु से जब दर्शन करेगा, होइब राधारा दासी, तब जाके राधारानी का दासी बन के ब्रज में रह के भजन कर सकते हैं। इतना आसानी नहीं है, फिर भी प्रार्थना कीजिए, सभी लोग का चरण में हमारा भी प्रार्थना है। हमारा कोई भी त्रुटि होता है कुछ बोलने में, कुछ ऐसा शब्द निकल भी जाता है, लेकिन जो शास्त्र में प्रमाण है आपका सामने, शास्त्र के तो प्रमाण के अनुसार कहते हैं। और ये श्रीमद् भागवत प्रत्येक दिन हमको पाठ करना चाहिए, बाई चांस आपको समय मिलता है प्रत्येक दिन रटिए, भागवत हमारा जीवन होना चाहिए। ये देखिए लिखा गया, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम जत वैष्णवानम प्रिय जस्मे परमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। ये भागवत परमहंस संहिता है, और क्या आते हैं पुराण अमलम, और वैष्णव लोग का क्या है प्रिय है, इसको लेकर घूमना चाहिए, ये भागवत को हृदय में धारण करना चाहिए। प्रत्येक दिन हमें भागवत को समय मिलता है तो पढ़ना चाहिए, कभी भी इधर उधर बात नहीं है, टाइम कहां मिलता है, और ब्रज में रह रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, संवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।